नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 345 करोड़ रुपए की लागत के 86 औद्योगिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। औद्योगिक विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण नीतियां भी जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए योजना को मंजूरी दी। राज्य में मौसम में बदलाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश। और प्रदेश में कल चैत्र प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत। घट स्थापना के साथ ही नवरात्र के विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम भी कल से। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए आज 3 महत्वपूर्ण नीतियों, इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन, एरोस्पेस तथा डिफेंस और सेमीकंडक्टर पॉलिसी का शुभारंभ किया। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर में आयोजित उद्यमी संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 345 करोड़ रुपए की लागत के 86 औद्योगिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नीति आधारित शासन में विश्वास रखती है ताकि उद्यमियों को पारदर्शिता और सुगमता मिले। उन्होंने बताया कि निवेशकों के सुझावों पर अमल करते हुए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति की समय सीमा 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। राजनिवेश पोर्टल अब राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिंगल सिस्टम से जुड़ चुका है, जहां 14 विभागों की 143 से अधिक सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हैं। श्री शर्मा ने बताया कि पिछले 2 सालों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है और रीको द्वारा आवंटित भूखंडों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने बिजली और पानी को औद्योगिक प्रगति की अनिवार्य शर्त बताते हुए ईआरसीपी और सोलर ऊर्जा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में अब तक 3 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। श्री शर्मा ने बताया कि बड़ी कंपनियों ने राज्य में ईवी निर्माण में रुचि दिखाई है।
राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उनमें से 8 लाख करोड़ से ऊपर के धरातल पर उतर गए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 1 साल के अंदर इतना काम भी हुआ। मुझे खुशी है कि हाल ही में होंडा ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण के लिए एमओयू किया है और वो ईवी कार बनाना चाह रहा है और उन्होंने अभी एमओयू करके काम प्रारंभ करेंगे। ये भरोसा इसलिए क्योंकि हमने धरातल पर काम करके दिखाया है। बीकानेर की धरती पर श्रमिक पार्क स्थापित किया है। रोहट पाली में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित कर हम राजस्थान को हरित ऊर्जा में सिरमौर बना रहे हैं। किशनगढ़ अजमेर में टाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित कर उद्योग को पहचान देने का मार्ग प्रशस्त किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए योजना को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना और देश की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना है। बैठक में किसानों के हित में भी एक बड़ा फैसला लेते हुए कपास सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने लघु जल विद्युत विकास योजना को भी स्वीकृति दी है, जिसके तहत आगामी वर्षों में अनेक छोटी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन निर्णयों से देश के औद्योगिक, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
आज 4 बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए। पहला है भारत में मेक इन इंडिया, उसके लिए 33,660 करोड़ रुपीस के सैंक्शन से आज कैबिनेट में अप्रूव हुई। दूसरा जो 2023-24 का कॉटन सीजन था, उसमें 11,712 करोड़ रुपए का जो सपोर्ट मिला, उसके रीइंबर्समेंट से रिलेटेड मैटर्स आज अप्रूव हुए। चौथा, बाराबंकी से बहराई, इसका एक्सेस कंट्रोल्ड 4-लेन हाईवे 6,969 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से अप्रूव हुआ और स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम आज अप्रूव हुई।
लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल मॉनसून सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि महिलाएं अपनी शक्ति का उपयोग राष्ट्र के विकास में करें। आज जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने ये बात कही। उन्होंने इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दया कुमारी को सामाजिक और सामुदायिक सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति पर जोर देते हुए कहा कि ये पद्धति भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने का माध्यम है। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए बालिका शिक्षा को राष्ट्र के विकास का मुख्य आधार बताया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने विभिन्न एयरलाइंस को यात्री सुविधाओं और कार्यप्रणालियों को मजबूत करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार किसी भी उड़ान में कम से कम 60% सीटें निशुल्क आवंटित करना शामिल है, ताकि सभी को समान रूप से सीटें मिल सकें। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया कि एक ही PNR पर यात्रा करने वाले यात्रियों को आसपास की सीटों पर एक साथ बैठाया जाना चाहिए। इसके साथ ही पालतू जानवरों को ले जाने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नीति लाने की भी बात सरकार ने कही है। इस बीच सरकार ने यात्रियों के अधिकारों, विशेषकर उड़ानों में देरी होने, इसके रद्द होने और विमान पर सवार होने से रोकने के मामलों में भी कड़े नियमों के निर्देश दिए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वंदे भारत ट्रेनों में कई उन्नत सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की गई हैं। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में एंटी क्लाइंबिंग सुविधाएं शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रेन में स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच लगाई गई है। श्री वैष्णव ने राज्यों से रेलवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की अपील भी की।
वंदे भारत चेयर कार की सर्विसेज 162 सर्विसेज चल चुकी है। मध्यम वर्गीय परिवारों ने इसको बहुत स्वीकार किया है। अमृत भारत ट्रेन जो कि गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी सर्विस है, 60 सर्विसेज चल चुकी है देश में। नमो भारत रैपिड रेल 4 सर्विसेज चल चुकी है। वंदे भारत स्लीपर 2 सर्विसेज चल चुकी है। हाइड्रोजन ट्रेन का डेवलपमेंट हो चुका है कम्प्लीट, जो कि विश्व की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन है।
और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में आए बदलाव के कारण आज कई स्थानों पर आंधी और हल्की बारिश के समाचार हैं। हनुमानगढ़ में ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट हुई है। बाड़मेर में बादल छाए रहने के बाद शाम को आंधी चली। पाली में शाम को आंधी चलने और बादल छाने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोटपूतली बहरोड में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। बालोतरा में आंधी चली, वहीं चूरू में हल्की बारिश के समाचार हैं। सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर और नागौर जिलों में भी तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। मौसम में आए बदलाव से कई स्थानों पर तापमान में गिरावट हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 3 दिन आंधी बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि के आसार हैं।
एक नए पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से प्रेरित परिसंचरण तंत्र दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर आज बना हुआ है और इसके प्रभाव से पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां आज से ही शुरू होंगी। इसका असर 19 और 20 मार्च को सर्वाधिक रहने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और के अलावा अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज हवाओं की संभावना है। इसके अलावा कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है।
कल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ हो रहा है। कल से ही चैत्र नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही घरों और मंदिरों में घट स्थापना कर 9 दिन तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगी। कई स्थानों पर मेले भी भरेंगे। हनुमानगढ़ जिले के मां भद्रकाली मंदिर और पल्लू कस्बे के मां ब्राह्मणी मंदिर के प्रसिद्ध मेलों का कल से आगाज हो रहा है। भरतपुर में देवी मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। उधर करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के कैला देवी में चल रहे चैत्र नवरात्रि मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।
मेला परिसर में चारों ओर लंगुरिया गीतों की धुनों पर नाचते गाते श्रद्धालुओं की शोभा देखते ही बनती है कि श्रद्धालुओं को दर्शन, सुरक्षा और स्वच्छता की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 200 अतिरिक्त सफाई कर्मी, सुरक्षा के लिए करीब 350 सुरक्षा कर्मी और 320 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कालीसिल नदी के घाटों पर कुशल तैराक नियुक्त किए गए हैं। वहीं विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों की ओर से श्रद्धालुओं की सेवा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर और भंडारों की व्यवस्था की गई है। 1 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। बाकेवारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नव संवत्सर 2083 और चैत्र नवरात्र पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। नव संवत्सर के अवसर पर कल राजस्थान दिवस भी मनाया जाएगा। राजस्थान दिवस के मौके पर कल शाम जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर ग्रैंड कल्चरल इवनिंग रखी गई है। इस कार्यक्रम में पद्मश्री अनवर खां मांगणियार समेत सैकड़ों लोक कलाकार प्रस्तुति देंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 345 करोड़ रुपए की लागत के 86 औद्योगिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। औद्योगिक विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण नीतियां भी जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना को मंजूरी दी। राज्य में मौसम में बदलाव से कई इलाकों में आंधी और हल्की बारिश। और प्रदेश में कल चैत्र प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि के विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम भी कल से। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।